الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرمایا کہ کبر یعنی تکبر ہمیشہ حماقت سے پیدا ہوتا ہے. اگر حماقت نہ ہو تو اپنی بڑائی کا انسان کو کبھی وسوسہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ خیال آ سکتا ہے. اس مرض میں قریب قریب عوام اور خواص سب مبتلا ہیں، اور اس کے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ کسی کافر کی جوتیوں میں جا پڑے، وہاں دماغ سے یہ خرناس نکل جائے گا. آج کل ہر شخص اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے، یہ سب حماقت کے درس میں ہے. یعنی اپنی بڑائی کا احساس، تکبر، فرمایا یہ حماقت کی علامت ہے، بلکہ حماقت ہی سے پیدا ہوتا ہے. اگر حماقت نہ ہو تو اپنی بڑائی کا کبھی وسوسہ بھی نہ آئے، حضرت فرماتے ہیں. کیونکہ بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے اپنی حقیقت کی غفلت. کسی کو بڑائی پیدا ہو گئی اس وجہ سے کہ میں زیادہ مالدار ہوں، کسی کو ہو گئی اس وجہ سے کہ میں بہت علم رکھتا ہوں، کسی کو ہو گئی اس وجہ سے کہ میں بہت طاقتور ہوں. لیکن یہ سب حماقت اس لیے ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا تم اپنے گھر سے اٹھا لائے تھے یہ مال، یا اپنی ذات میں تمہارے پاس تھا یہ مال، یہ دولت، یہ علم، یہ طاقت، جو کچھ ہے یہ تم نے کچھ خود ہی پیدا کر لی تھی. اگر اس بات کا احساس ہو انسان کو کہ میں تو بے حقیقت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ عطا فرمایا، وعدہ فرمایا، اس کی عطا ہے، میں نہ اس کو پیدا کر سکتا تھا نہ اس کو حاصل کرنے کا کوئی میرے پاس یقینی ذریعہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، تو جو کچھ ہے اس کی عطا ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے. دیکھو، ایک ہی آدمی ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور سامان لیے بیٹھا ہے تجارت کرنے کے لیے، سامان سے دکان کھڑی ہوئی ہے، لیکن خریدار نہیں آتا. سارا دن بیٹھ گیا، خریدار نہیں آیا، تو سارا سامان تجارت موجود ہے لیکن آم سے نہیں ہو رہی. یہ خریدار ہے، اس کو کون بھیج رہا ہے دکان کے اوپر کہ جس کے نتیجے میں بکری ہوتی ہے، آمدنی ہوتی ہے. تو جو جس چیز کو بھی دیکھو گے تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کچھ مل رہا ہے، ورنہ اپنی ذات میں رکھا بھی کرے گا. میرے مرحوم بھائی نے اللہ تعالیٰ مخصوص فرمائے، درجات پرست فرمائے، مولانا ذکی کرتی صاحب، مولانا مدثر صاحب کے بارے وہ ایک دن فرمانے لگے کہ ان کی دکان کی کتابوں کی घर भी है लाहौर में उनके बेटे चलाते हैं। तो कह रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि लाहौर में शदीद बारिश हो गई और लोग जो है घरों से नहीं निकल रहे थे बारिश की शिद्दत की वजह से, पानी खराब हुआ था सड़कों पर। तो मैं मेरे दिमाग में ये बात आई कि आज अगर मैं दुकान न जाऊं तो क्या है, कौन आएगा दुकान पर किताब खरीदने। इस वास्ते कि अव्वल तो इस बारिश में लोग बिना जरूरत, जब तक कि कोई शरीर जरूरत ना हो, निकलने की जरूरत नहीं करते, और अगर निकलेंगे भी तो किसी बहुत ही जरूरी चीज के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए। किताब को ऐसी फौरी जरूरत नहीं है कि आज ही कोई खरीदने के लिए आए हैं। सोचेगा कि चलो भाई आज तो बारिश हो रही है, कल चले जाए। और किताब की दीनी किताब, क्योंकि उनकी सारी दुकान में किताबें सारी दीनी किताबें थी, तो दीनी किताब जो है वो कोई ऐसी फौरी वक्त की जरूरत की चीज तो है नहीं कि लोग जो है बारिश में सैलाब में निकल के आए और खरीदे। तो आज जाहिर कोई ग्राहक तो आने वाला है नहीं, तो आज मैं छुट्टी कर लूँ, ये दिमाग में आकात आई। लेकिन चूंकि बुजुर्गों के सोहबत की आदत है, अल्लाह ताला ने बुजुर्गों की सोहबत नसीब फरमाई थी, तो फिर फरमाया तो फौरन ही मेरे दिल ने जवाब दिया कि क्या बात कर रहे हो कि आज ग्राहक नहीं आएगा, इस बात से ना जाए। अरे तुम्हारा काम यह है कि जाओ और जाकर दुकान खोलो और बैठ जाओ, ग्राहक भेजना तो किसी और का काम है, वो जब चाहेगा तो भेज देगा, भेज जाएगा तो बारिश का बहुत शानदार मौसम में भी कोई ना आए, और वो तो भेजना कोई और ही है, तो तुमने क्यों यह हिसाब किताब लगा लिया कि बारिश में कोई नहीं आएगा जाकर दुकान ना खोलो। तो फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह फौरन तनब्बो हुआ कि मेरा काम यह है कि मैं जाकर बैठूं और दुकान खोलूं, अल्लाह ताला को रिस्क देना होगा। वो आता फरमाया कि मैंने छतरी ली और पाँचे चढ़ाए पजामे से ताकि उसमें से निकल सकूं पानी में से, और धूप का रास्ता पहुंच गया और दुकान खोली, खोल के बैठ गया, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद देखा लोग छतरी लगा लगाकर आ रहे हैं और किताबें खरीद रहे हैं। तो फरमाते हैं कि मैं सोचता था कि या अल्लाह इसको किसने दिल में इसे डाला कि इस बारिश के मौसम में, आंधी में, तूफान में ये छतरी लगा लगाकर आ रहे हैं। भाई कोई अगर रोटी खरीदने आता, कोई सालन खरीदने आता, कोई खाने पीने की चीज खरीदने आता जिसकी हर वक्त जरूरत होती है, समझ भी आती बात। लेकिन दीनी किताब खरीदने के लिए जो घर भी खरीद सकते थे, पत्थर भी खरीद सकते थे, वो आ रहे लोग। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जरा फिक्र रिज्क का एक रास्ता बनाया, इंसान का काम यह है कि वो काम कर ले, अब उसको तकमील तक पहुंचाना अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे कुदरत है। तो आता उनकी नहीं है तो कहां से आ गई। तो हजार दुकान खोल के बैठ जाते, हजार अखबार इख्तियार कर लेते, हजार वजह इख्तियार कर लेते, अव्वल तो जिन ताकतों से इख्तियार करते वो भी उन्हीं की दी हुई है। ये हाथ पाओ किसके अता किए हुए हैं, कहां से आ गए हैं, इसमें कुवत कैसे आ गई है, इसमें ताकत कैसे आ गई है, ये जहन जो चल रहा है कि किसने अता फरमाया है, ये सब कुछ उसी का अता है। तो उसके बाद अखबार इख्तियार कर लिए। तो रिस्क देने वाला वही है, लिहाजा अगर कोई अपने माल दौलत पर इतराता है, तदब्बुर करता है, तो हम अहमक नहीं है, दौड़ क्या है। उसने कहीं से हारून का जिक्र किया कुरान करीम ने कि उसके खजाने इससे ज्यादा थे, कि खजाने की जो चाबियां थी वो चाबियां भी वो ऊंटों पर लाद कर ले जाए करते, इतनी इतने इतने दौलत थी उसके पास। तो जब उसने कहा गया कि अल्लाह का शुक्र अदा कर, तो कहना इनमा उसी दू आला इल्म नहीं थी, ये तो सब मुझे अपने इल्म के बदौलत मिला है, जो कुछ मिला है। तो वो अपना तकब्बुर में फंसा हुआ था, हमाकत। तो कोई चीज दुनिया की, कोई नेमत ऐसी नहीं है जिसको इंसान अपना कह सके, जो कुछ है अल्लाह के दयालु की आता है। तो जब आता है तो उसको कोई शख्स उस पर इतराने लगे और बड़ाई मारने लगे कि ये मेरी है, और मेरी मिल्कियत है और उसकी वजह से दूसरों को आखिर समझने लगे, इससे बड़ी हलाकत और क्या हो। एक शख्स है, वो आपको कोई सवारी दे गया, आरजी इस्तेमाल के लिए, आपकी नहीं है, आप उसके ऊपर अकड़ने लगे कि मेरी है। तो जो कुछ भी है, पैसा हो, इल्म हो, ताकत हो, हुस्न हो, कोई चीज हो, वो सब अल्लाह जल्ला जलालहू चाहता है और जब चाहे सल्ब फरमा ले, जब चाहे वापस ले ले। तो किस बात में इतरा है इंसान? इसलिए हजरत ने फरमाया कि तकब्बुर जो है ये तो हमाकत की वजह से पैदा होता है, हमाकत का और तकब्बुर का बसवसा बना है। अल्लाह, हमारे पहले भी अक्सर आपको सुनाया होगा, मैं हमारे अजीज से, अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी उनको कि वो कहते थे कि मैंने कभी तरबूज जो होता था कभी मैंने चाकू से नहीं काटा, एक मुक्का मारा और उसके दो टुकड़े हो गए। और बड़े बड़े अजीब ताकत के मुजाहरे किया करते थे। तो बीमार पड़ गए, अभी चंद साल पहले की बात है, मैं आदत के लिए गया तो देखा बिल्कुल निराश पड़े हुए हैं बिस्तर के ऊपर, हाथ उठाना भी मुश्किल। तो जब मैं गया सलाम किया, हजरत पूछी तो फरमाने लगे कि हाँ मियां, मैं वही हूँ जो तरबूज को हाथ से तोड़ दिया करता था, अल्लाह ताला ने आज आज की हालत आ गई। तो किस चीज पर इंसान इतराए, किस चीज पर इंसान तकब्बुर करे? जो कुछ है अल्लाह ने दिया आता है, जब चाहे वापस ले। इस वास्ते तकब्बुर का मंशा सिवाय हकाकत के कोई और नहीं। इसके बरखिलाफ अगर इंसान तकब्बुर के बजाय तवाज़ु इख्तियार करे, आजज़ी इख्तियार करे, इंकिसारी इख्तियार करे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आप को फना करे, तो उसका दुनिया और आखिरत में उसके नतायज ही और है। हमारे अल्पाला हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना थानू सल्लल्लाहु तआला सिर्रहू की तो सारी तालीम का खुलासा ही है। हजरत सैयद साहब रहमतुल्लाह हाजिर हुए हजरत वाला की खिदमत में और जब चलने लगे तो पूछा कि हजरत को नसीहत फरमा दी। तो हजरत फरमाते हैं कि मेरे दिमाग में ये बात आई उस वक्त, ये इसका बड़ा अल्लामा है, अल्लामा सैयद सलमान नकवी, किताबों तालीफात बेशुमार फैली हुई, इल्म के दरिया का छनावर, मुतबाहिर आलिम, ये मुझसे पूछा है कि नसीहत करो तो क्या नसीहत करूँ इतने बड़े आलिम को। तो हजरत फरमाया करते थे कि मैं हर ऐसे मौके पर फौरन अल्लाह तबारक व तआला से दिल दिल में दुआ कर लेता था। जब भी कोई सवाल करता तो सवाल का जवाब देने से पहले दिल दिल में या अल्लाह पता नहीं ये क्या सवाल कर लेगा और क्या सवाल किया इसने, या अल्लाह इसका सही जवाब मेरे दिल में डाल फौरन अल्लाह ताला से दुआ कर। और फिर फरमाया कि भाई हमारे यहाँ तो अव्वल और आखिर अपने आप को भिजा देना है, अव्वल और आखिर हमारे यहाँ का सबक अपने आप को भिजा देना है, अपने आप को मिटा देना अल्लाह के सामने, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत के सामने, अल्लाह ताला के अहकाम के सामने, और तकब्बुर को दिल में जगह न देना, अपने आप अपनी हकीकत को हर वक्त मद्देनजर रखना, यह है सारा सबक। और जिसको एक चीज हासिल हो गई तो इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंच गया। अल्लाह, इस वक्त हमारे द्वारा हजरत आरिफ की कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौलत तआला के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके सारे तारीफ का खुलासा भी था कि मियां हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से बातें किया करो, अल्लाह ताला के सामने आज की इंतजारी का इजहार किया करो, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी मुराद और हाजत पेश किया करो और अल्लाह ताला ही से मांगा करो। क्या कहे वो फरमाते थे कि आज हर इंसान के जबान पर ये शिकवा सुनने में आता है कि भाई हालात खराब हो गए हैं, माशरा बिगड़ गया है, माहौल खराब है, इसमें दीन पर चलना मुश्किल हो गया है, बाहर निकलो तो निगाहों को पनाह नहीं मिलती, हर जगह गुनाहों के महर्रकात और दाइये मौजूद हैं इंसान को बरगराने के लिए, शैतान ने अपने जाल बिछाए हुए हैं, आंखों को पनाह नहीं मिलती, कानों को पनाह नहीं मिलती, जबान को पनाह नहीं मिलती, हर जगह गुनाह के दाइये मौजूद हैं। ऐसे हालात में हम कैसे दीन पर चलें और कैसे दीन पर अमल करें। तो हजरत फरमाते थे कि सवाल तो तुम्हारे सुनने का पाया हो गया भाई, आप जो है बहुत से लोग उसको जो भी साबित करते हैं कि अल्लाह आपने पैदा ही ऐसे माहौल में किया, ऐसे माशरे में किया जहाँ चारों तरफ गुनाह और माफियतों का दौर दौरा था, कई सहाबे कराम के दौर में पैदा किया होता मुकद्दस दौर में जहाँ हर तरफ नेकी का दौर दौरा था तो हम भी नेक बन जाते, लेकिन आपने पैदा ही किया ऐसे माहौल में जहाँ चारों तरफ गुनाह है, माफियतें हैं, पठान पत्ता है, बिगाड़ फैला हुआ है, तो अब क्या करें, हम इस माहौल के अंदर अपने आप को किस तरह बचाएं। तो हमारे हर वाला कदस की तरह जात कर फरमाए, फरमा सकते कि चलो आज थोड़ा सा इसकी मश्क करो, सोचो कि मैदान हशर कायम है, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हाजिरी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने फला गुना क्यों किया था, फला माते क्यों की थी, फला गुना से तुम मुबतला हुए थे, फला वाजबात को क्यों तर्क किया था, चलो दे दो उनको वही जवाब जो आज इस काल के तौर पर दे। या लमिया पैदा ही आपने ऐसे ऐसे माहौल में किया था चारों तरफ आग लगी हुई थी वाकियतों की, आपने कहीं साबित ग्राम के तौर पर पैदा कर दिया होता तो हम भी नेक हो जाते, आपने ऐसे बाहर पैदा किया तो उसको बुजुर्ग का माहौल था तो क्या करते आप मुबतला हो गए, बड़ा मुश्किल था उस दौर में गुनाहों से बचना और दीन पर चलना, बड़ा मुश्किल काम था, तो आपने पैदा ही ऐसी जगह पर किया तो बताए तो तुमने बड़ा वर्णनीय जवाब दे दिया, लेकिन अगर उसके जवाब में बारी ताला ये फरमाए प्यारे भाई जिस माहौल को तुम कह रहे थे कि ये बड़ा खराब है और इसमें दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है और इसमें अपने आप को बचाना बहुत दुश्वार है, वो तुम्हारे लिए दुश्वार था या मेरे लिए दुश्वार था, मुझसे मांगा क्यों नहीं, मुझसे कहा क्यों नहीं कि अल्लाह ये इस मुसीबत में घिरा हुआ हूँ, चारों तरफ जुल्मतें हैं, फिर को बुजूर है और मासियतों का बाजार गर्म है, या अल्लाह इस माहौल में घिरा हुआ हूँ, अल्लाह अपने फजल करम से मुझे इस माहौल के शर से बचा ले और मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे दे, इस माहौल के अंदर भी मेरी हिफाजत कर ले, ये मुझे पुकारा क्यों नहीं, मेरी मदद क्यों नहीं मांगी, मुझसे दुआ क्यों नहीं की कि मुझे इस माहौल की मुश्किल से नजात दे दे, बताओ क्या आपको मुश्किल था कि मुझसे कहते कि अल्लाह आपने कुरान में फरमाया कि अल्लाह आला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह आला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, तो क्या मुझे कुदरत नहीं थी कि मैं तुम्हें इससे बचा लेता, और कुछ नहीं तो मेरे पास आकर मेरे आगे सजदा रेज होकर मेरे आगे गिड़गिड़ाकर ये कह दिया होता कि या का नाम लो या का रस्ताही, अल्लाह हम आप इसकी इबादत करते हैं, आपसे मदद चाहते हैं, अल्लाह मुझे इस माहौल के शर्त बचा लीजिए, ये क्यों नहीं कहा तुम, बताओ इसका क्या जवाब। तो अगर चारों तरफ जुल्मतें फैली हुई हैं, अंधेरियां हैं, तारीखियां हैं, लेकिन उन तारीखियों में अगर अल्लाह तबारक व तआला को पुकारो अपने आप को पना करके आखिरी के साथ इंकसारी के साथ पुकारो कि अल्लाह मैं गिर गया हूँ जुल्मतों में, अब तो फल जो करो तो मुझे निकाल लीजिए। और हमारे फरमाते थे कि देखो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, कुरान करीम ने उनका वाकया बयान फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया और 3 दिन रहे मछली के पेट में, क्या किया वहां बताओ? मछली का पेट है, तारीखियां हैं, जुलमते हैं, अंधेरे हैं, और कितना मुश्किल माहौल है जिसमें यूनुस अलैहि सलाम गए। तो कुरान क्या कहता है, क्या किया उन्होंने? फनादा फि जुलमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। हमें पुकारा, अल्लाह आपके सिवा कोई माबूद नहीं है, आप हर ऐब से पाक हैं, और मैंने अपनी जान पर जुल्म किया हुआ है। तो ज़बान हाथ से पुकारा कि अल्लाह मुझे नजात दे दीजिए जुल्मा। जब पुकारा उन जुल्मतों में क्या कहते हैं पुराने कई ना उपने गम, हमने उनको घुटन से नजात दे दी। ये फरमाया, उसके साथ अगला जुमला अजीब फरमा दिया, और हम इसी तरह नजात देते हैं मोमिनों को। और एक तर्जुमा कहीं भी हो सकता है, किसी तरह नजात देंगे मोमिनों को, वो मोमिन जो जुलमात में घिर कर हमें पुकारेंगे उनको जुलमात से तारीखियों से नजात देंगे। तो हमारे उस फरमाते थे जिनका फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि मोमिनों को नजात देंगे या नजात देते हैं, क्या हर मोमिन जाएगा मछली के पेट से वहां नजात मिलेगी? जाहिर है कि नहीं। तो मतलब कि जब भी जुलमात में घिरो, तारीखियों में घिरो, वो तारीखियां अमाल की तारीखियां हो, अकीदे की तारीखियां हो, माहौल की तारीखियां हो, फिस्को फुजूर की तारीखियां हो, उनमें जब घिरो तो पुकारो अल्लाह को, तो जब वो इस और इखलास के साथ पुकारेगा अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह तआला जरूर नजात देंगे। फरमाया तो वजीफा ये बनाओ कि हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला से रابطہ कायम करके उसको पुकारो, ज्यादा फंस गया हूं निकाल दे। एक मतलब हजरत फरमाने लगे, अजीब अल्लाह वालों की निगाहें देखिए। हजरत फरमाते थे कि एक मरतबा मैं जब हिंदुस्तान में था तो किसी जगह जा रहे थे, किसी अपने वतन से किसी देहात में जाना था, तो तांगे में जा रहे थे। तो जाते जाते तांगे वाले ने अचानक हमसे कहा कि देखो भाई, अभी थोड़ी देर में मैं आपसे उतरने को कहूंगा, टांगे में टांगा रोकूंगा, उतरने को कहूंगा, फिर आप फौरन उतर जाना। और सुनाते हमने पूछा भाई क्यों? कहा कि भी ये इलाका जो है ये ऐसा है कि यहाँ पर जबरदस्त आंधी चलती है, बड़ी खतरनाक, और उस आंधी के आसार नजर आ रहे हैं कि थोड़ी देर में आंधी आने वाली है, तो मैं टांगा रोकूंगा, आप फौरन टांगे में से उतर जाना। अच्छा भाई, थोड़ी देर में तुम्हें अचानक टांगा रोका और कहा उतर जाओ। तो चूंकि उसने कहा था कि वो आंधी आती है बड़ी सख्त और वो बगावत आदमी तक को उड़ा ले जाती है, और पत्थर चारों तरफ से आते हैं और बगावत पत्थर लग जाते हैं आदमियों को, गुजराने क्या कुछ होता है, तो इस वास्ते आप उतर जाओ। क्योंकि उसने कहा तो हमने क्या किया, फरमाया तो मैंने जल्दी से करीब में दरख्त था, तो दरख्त की छाँव में छाए में जाकर मैं बैठने लगा। तो टांगे वाला पुकारा कि देखो हर किस दरख्त के नीचे मत जाना, दरख्त से हट जाओ। मैं क्यों? कि यहाँ आंधी जब चलती है तो बड़े बड़े दरख्त गिर पड़ते हैं, आदमी अगर उस दरख्त के नीचे बैठा होगा तो उछला जाएगा दरख्त से, दरख्त से हटो। अच्छा भाई क्या करें, कैसे कहाँ बना ले? बना लो तो बस जमीन पर उल्टे लेट जाओ, उन्हें और कोई रास्ता नहीं है आंधी के तूफान से बचने का, उल्टे लेट जाओ। तो फरमाते हैं हम तरफ से निकले और जाकर जमीन धोकर उल्टे लेट गए। अब लेट गए, आंधी आई और बड़ी जोर शोर से आई, जबरदस्त आवाज थी, और पता नहीं क्या कुछ उड़ रहा था और तरफ गिर रहे थे, पता नहीं अजीब आलम था। जोर शोर से आई, कुछ देर तक आंधी का जोर रहा, तूफान चला, यहाँ तक के आंधी खत्म हो गई। आंधी खत्म हो गई, हम लेटे रहे जमीन पे, और जब आंधी खत्म हो गई तो हम उठ गए। इस तरह उठ गया कि बाल भी पीका नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई जख्म नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं हुई, खड़े हो गए। जाके दोबारा टांगे में बैठ गए और टांगे में बैठ के टांगे वाला चल पड़ा। अब देखो हजरत फरमाते हैं, ये अल्लाह वालों की निगाहें, फरमाया कि वाक्य तो होने को हो गया, लेकिन फिर इस पर जब हमने गौर किया तो सबक ये मिला कि जब आंधियां चल रही हो तो ऊंचे ऊंचे सहारे लेने से काम नहीं चलता, ऊंचे ऊंचे सहारे लेने से काम नहीं चलता, उस सूरत में तो खाकसारी से काम चलता है कि आदमी मट्टी से अपना दामन वाबस्ता कर ले और मट्टी में अपने आप को मिला ले और मट्टी से ताल्लुक कायम कर ले और ऊंचे ऊंचे दरख्तों का से ताल्लुक कायम करने से काम नहीं चलता। जब आदमी खाकसारी इख्तियार करेगा, फिरोजनी इख्तियार करेगा, आर्टी इख्तियार करेगा, अपने अल्लाह से इसकी तरह रुजू करेगा तो आंधियां सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, तूफान सर पर से गुजर जाएंगे। सर फरमाया कि ये सारी फिस्क वजूद से जो आंधियां चल रही है, तूफान आया हुआ है सारी दुनिया में, बुरियानी का, बहादी का, बदअखलाकी का, बेदीनी का, अल्लाह बताए बदअखलाकियों का जो तूफान आया हुआ है, इस तूफान से बचने का रास्ता क्या है कि लेट जाओ। और लेट जाने का माना ये कि अल्लाह से दिला लोगों से ताल्लुक कायम कर लो, खाकसारी से, फरोतनी से, आदमी से पुकारो के परवरदिगार को, अल्लाह इस आदमी में गिर गया हूँ, इस तूफान में गिर गया हूँ, अपने फजल करम से मुझे निकाल दो। ये जब खाकसारी आदमी इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह निकाल देगा। अल्लाह एक दिन और फरमाने लगे कि बातें आदत याद आ रहा, अजीब वगरीब बातें फरमाते थे याद आ। एक दिन और फरमाने लगे कि एक दिन मुझे ख्याल आया कि ये जो जितने गुनाह जो दुनिया में हो रहे हैं, अगर देखो तो ये सब आग है। इसीलिए कुरान करीम में फरमाया कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। ये आग है हकीकत में, तो इस वक्त हमें वो आग नजर नहीं आ रही, जब आंखें बंद होगी और ये दुनिया का नक्शा बदलेगा, आखिरत शुरू होगी, ये सारे गुनाह जो है ये आग की शक्ल में भड़क उठे। तो जहन का ख्याल ये आया कि जब चारों तरफ गुनाह की आग बढ़ती हुई है और हम उसी के दरमियान रह रहे हैं तो बचाव कैसे हो उस आग से, बचाव कैसे होगा। तो फरमाया फौरन इस दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हकीकी जो आंखों से नजर आने वाली आग उनके सामने आई, उनको उसमें डाला गया और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से रास्ता कायम किया। तो हमें क्या कहते हैं, पूरी मर्दम व सलाम अला इब्राहिम, या नाम पूरी मर्दम व सलाम अला इब्राहिम, ए नार ए आग तू ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन। तो ये वाक्य क्यों जिक्र किया कुरान ने, हर एक आदमी को तो ये वाक्य वैसे ही आता कि कुछ दुश्मन उसका आग में डाले, लेकिन एक आग ऐसी है जिसमें हर इंसान फंसा हुआ है, वो है गुनाहों की आग, माफियतों की आग, फिसको फुजूर की आग, उसमें आदमी हर इंसान फंसा हुआ है। तो जो वाक्य सुनाने का मंशा यह है कि मांगो मुझसे, पुकारो मुझे कि अल्लाह इस आग में फंसा हुआ हो, इस आग को मेरे लिए ठंडा कर दीजिए, सलामती नजरिया बना दीजिए, जैसे कि आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आपको ठंडा कर दिया था और सलामती नजरिया बना दिया। तो हजरत फरमाते हैं कि भाई बजाय इसके कि ये शिकवा करते फिरो तो वे चारों तरफ का माहौल खराब है, जितना वक्त इस शिकवे में खर्च करते हो उसके बजाय अल्लाह ताला से पनाह मांगने में खर्च करो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगो, अल्लाह ताला से को पुकारो कि या अल्लाह मैं इस यहाँ इस माहौल में फंस गया हूँ, मुझे अपनी रहमत से निजात दे दो। तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह अगर ये करते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह तुम्हें निकाल लेंगे, और अगर कुछ उसमें भूल चूक होगी भी तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत की उम्मीद है। इस बंदे ने मुझे पुकारा तो था, इस पुकार कर इसने मुझसे मदद भी जारी की, अब किसी कोशिश भी की थी और उसके बाद फिसल गया, अल्लाह ताला क्या उम्मीद है कि माफी कराता होगा। लेकिन गफलत की हालत में जो वक्त गुजर रहा है यह बला, यह मुसीबत, यह गफलत है, परवाही नहीं है कि क्या हो रहा है, परवाही नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं। इसके बखिलाफ जब अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करके पुकार लेगा तो गफलत दूर हो गई, अल्लाह ताला से रब्ता जोड़ लिया, उसके आगे फिरौतन इख्तियार कर ली, इंशाअल्लाह कभी ना कभी अल्लाह ताला उसे नजात देंगे, और कम अज कम इतना होगा कि उसके अगर कुछ अज़रात तुम पर पहुंचे भी हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से इंशाअल्लाह मगफरत का मामला होने की उम्मीद। और देखो ये दुआ जो है ना ये भी बड़ी काम की बात है कि और जो दुआएं होती हैं जो आदमी अपने दुनियावी मकासद के लिए मांगता है कि या अल्लाह मुझे नौकरी मिल जाए, या अल्लाह मुझे पैसे मिल जाए, या अल्लाह मेरी बीमारी अच्छी हो जाए वगैरह वगैरह, इसमें तो ये एहतमाल भी है इन दुआओं में कि हम मांग तो रहे हैं मगर ये हमारे हक में फायदा मंद ना, पैसा मांग रहे हैं लेकिन नादानी में मांग रहे हैं, पता नहीं कि जब पैसा आएगा तो पैसा आने के बाद हमारी क्या हालत होगी, वो कहीं हमें तकबूर में उतरा तो नहीं कर देगा, वो हमें हर किसी पर तो आमादा नहीं कर देगा, तो हमें पता नहीं उसके अच्छाई बुराई का, लेकिन मांगते हैं कि अल्लाह पैसा दे दीजिए, तो हो सकता है कि हमारे लिए खुशी ना हो, इस वास्ते अल्लाह ताला वो न दे, पैसा ना दे, कोई और चीज दे दे, हम बीमारी से सेहत मांग रहे हैं लेकिन क्या पता कि वो बीमारी हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो, अल्लाह तबारक व तआला की इल्म में अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक लिहाजा अल्लाह ताला सेहत के बजाय हमें अजर अता फरमा दे। और चीजें जितनी मांगी जाती हैं उनमें इस बात का एहतमाल मौजूद है कि जो चीज हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला के इल्म में वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, लिहाजा उसकी जगह कोई और चीज अता फरमा दे, वो ना दे। लेकिन जब बंदा मांगता है दीन मांगता है, दीन का ऊपर चलने की तौफीक मांगता है, और जब अल्लाह तबारक व तआला से सिराते मुस्तकीम मांगता है, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला दे, मुझे दीन पर अमल करने की तौफीक दे दे, मुझे इत्तबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमा दे, तो इसमें कोई दूसरा एहतमाल नहीं है कि भाई इत्तबाए सुन्नत इसके आपको फायदेमंद ना हो, या दीन पर चलना इसके आपको फायदेमंद ना हो तो अल्लाह तआला कोई और चीज दे दे, नहीं इसमें कोई एतमाल नहीं, दीन पर अमल करना तो हर हाल में है नापे ही नापे है, और इत्तबाए सुन्नत हर हालत में फायदा ही फायदा है, उसमें यह एतमाल नहीं कि हो सकता है कि किसी और कोई और फायदेमंद चीज हो उसकी जगह नजर हो जाए, लिहाजा जरूर देंगे, वो हो नहीं सकता कि ना दे, वो देंगे जरूर, मांगने वाले की बात है। बाद अवकात ये होता है, जरा यहाँ पर भी एक बात और, ये भी हजरत हमारे हजरत वाले की बात है, जब बाद अवकात ऐसा होता है कि आदमी मांग रहा है कि या अल्लाह मैं गुनाह गुनाह में मुबतला हूँ, अब उसे छोड़ा नहीं जा रहा, अल्लाह मुझसे छुड़वा दे, अल्लाह मुझे हिम्मत नहीं हो रही हिम्मत दे दे, अल्लाह मुझसे हौसला नहीं हो रहा हौसला दे दे, मांग रहा है बार बार दुआ कर रहा है लेकिन फिर मुबतला हो जाता है, फिर मुबतला हो जाता है। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि जब کوئی شخص دین کی بات مانگے تو اس میں چونکہ دوسرا احتمال نہیں, اس بات سے اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. تو کسی کے دل میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو بات کئی مرتبہ مانگا کہ فلاں دین کے فلاں حکم پر عمل کی توفیق دے دے, فلاں گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے, لیکن بار بار سے مبتلا ہو رہے ہیں, بار بار سے مبتلا ہو رہے ہیں, یہ دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی, یہ خیال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب بھی ہمارے دوارا نے دیا تھا, ہے بڑی نازک بات لیکن اس کو میں آسان طریقے سے یوں سمجھاتا ہوں کہ جب اگر تم نے مانگا تھا یہ چیز سچے تھے, یعنی واقعی یہ مانگی تھی کہ میں گناہ سے بچوں, جس کی دلیل یہ ہے کہ اپنی طرف سے تم نے ارادہ بھی کیا تھا اس سے بچنے کا, گناہ سے بچنے کا ارادہ بھی کیا تھا, ہمت بھی اپنی طرف سے باندھی تھی کہ نہیں کروں گا, اور پھر اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے بچا لے, تو یہ مانگنا تو بہت زبر ہے. لیکن اگر اس لیے مانگا تھا کہ قدم تو اٹھ رہا ہے گناہ کی طرف خود بخود جا رہا ہے اس طرف اور مانگ رہا ہے کہ مجھے بچا لے, تو اس کا معنی یہ کہ صحیح معنی میں دل میں نیت بچنے کی ہے نہیں. ایسی مثال یہ سمجھو کہ مسجد کو جا رہا ہے, قدم مغرب پڑھنے کی طرف بڑھا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے یار مجھے مغرب کی طرف لے جا, تو قدم کو خود بڑھا رکھتے ہیں مسجد کی طرف اور پھر مانگ رہا ہے مغرب کو جانا, یہ تو مذاق ہے, یہ مانگنا نہ ہوا. مانگنا وہ ہے کہ اپنی طرف سے ارادہ بھی کیا, عزم بھی کیا, اور جو اسباب ہیں گناہ سے بچنے کے وہ بھی اختیار کیا, اس کے بعد مانگا تھا یا اللہ میں نے اختیار تو کر لیے لیکن پتہ نہیں کس وقت میں بھٹک جاؤں بہن جاؤں, یا اللہ مجھے بچا لیجیے بھٹکنے پر. جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا, یوسف علیہ السلام کے کو دعوت تھی, زلیخا نے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے, تالے ڈال دیے, یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ تالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں دروازے تک بھاگ جاؤں, دروازے تک بھاگ جاؤں, اور اس کے بعد پر دعا کی اللہ کے اندر, یا اللہ یہ کام تو میں نے کر لیا, اب آگے بچانا آپ کے اختیار ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو اپنا حصے کا کام کر کے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے سارے ٹوٹ. تو اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ سے بچنے کے لیے اپنی سی کوشش کر کے, ہمت کر کے, حوصلہ کر کے, ارادہ کر کے پھر تو آپ آگے یا اللہ مجھے بچا لے, تو وہ ہے معتبر, اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتے ہیں. پھر بھی اگر ابتلا ہو جائے, باوجود اس کے بھی ابتلا ہو جائے, تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر توبہ کی توفیق ہوتی ہے, توبہ کی توفیق ہوتی ہے, اور پھر توبہ کی توفیق ہونے کے نتیجے میں بعض اوقات بندے کے درجات اور زیادہ بلند ہو جاتے ہیں. ہمارے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نادان تو نے جو دعا مانگی تھی اور اس کے بعد سے تو بھٹک گیا, پھر جو تو نے توبہ کی تو ہمیں اپنا مورم بنانا تھی اپنی سرداری کا, اپنی غفاری کا, اپنی رحمتوں کا, اور تیرے دل میں جو ندامت پیدا ہوئی, تیرے دل میں جو شمساری آئی, تیرے دل میں جو خاکساری آئی, اس سے تیرے درجات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. تو اگر انسان ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگے تو پھر اگر مرتبہ پھسل بھی گیا تو انشاءاللہ توبہ کی توفیق ہو جائے, اور توبہ کی توفیق ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات میں مزید اضافہ فرمائے. لہذا مانگنا نہ چھوڑو اللہ تعالیٰ سے, کسی بھی حال میں مانگنا نہ چھوڑو, ارادہ کرو, اپنی طرف سے کوشش کرو, ہمت کرو, اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. حکم امر من اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, یا اللہ میں تو آپ کے حوالے کرتے ہیں اپنے آپ کو, مجھے بچا لیجیے. اور یہ سب باتیں اس وقت آئیں گی جب دل میں تواضع ہوگی, فنائیت ہوگی, خاکداری ہوگی, تکبر کے بعد یہ چیزیں نہیں آئے گی. جب آپ نے اپنے آپ کو कोई बड़ा समझने लगे, ये समझने लगे मैं बहुत कोई आला मखलूक हूँ, तो फिर उसके दिल में कभी इस किस्म की बातें भी नहीं आती। ये तो उसी की आती हैं जो अपने आप को अल्लाह ताला के आगे बिठा चुका हो। हमारे हज़रत फरमाते थे कि देखो सूरह फातिहा जो है, सूरह फातिहा ये पूरे कुरान का खुलासा है, पूरे कुरान का खुलासा है। सारे उलमा मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये इत्र है पूरे कुरान, इसीलिए इसको उम्मुल कुरान भी कहा गया। सूरह फातिहा उम्मुल कुरान यानी कुरान की असल जड़, उसकी रूह इस सूरह फातिहा में। क्या है सूरह फातिहा में? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम अद्दीन। तीन आयतें तो अल्लाह जल्ला जलालुहु की तारीफ में है, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का उसमें बयान है। फिर बंदे ने अपनी जो बात बंदे की तरफ से कहलवाई अल्लाह ताला वो क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। फिर इसी सिरात मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत का फरमाइए, सीधे रास्ते पर चढ़ा दीजिए। तो सारे कुरान की का खुलासा जो है वो ये सबक दे रहा है कि हर वक्त अल्लाह ताला से रुजू करो, अल्लाह ताला से मांगो, और इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, इसका वजीफा बनाओ और अल्लाह ताला से सिराते मुस्तकीम मांगो हर वक्त हर काम। और रब जो इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने इतना आम इस्तेमाल किया सिराते मुस्तकीम, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह मुझे दीन की हिदायत दे दीजिए, ये नहीं फरमाया कि इस्लाम की हिदायत दे दीजिए, ये नहीं फरमाया कि अच्छे अखलाक दे दीजिए। इसका बड़ा लोग इस्तेमाल किया सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। अब सीधा रास्ता दीन में भी है, दुनिया में भी है, हर काम में इंसान को सीधे रास्ते की तलाश है और उसकी हाजत है वो अल्लाह के पास। तो हमारे अल्लाह फरमाते थे कि पूरे सूरह कुरान का खुलासा है सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा का खुलासा है या कनाब जो या में रखता है ऐसे रखवा कर सकता, जिसमें तालीम ये दी गई है कि अल्लाह ताला से ताज्जुब खुशगवार करो, अल्लाह ताला से मांगो हर बात, और सिराते मुस्तकीम भी अल्लाह से मांगो, जहाँ भी गठ बगठ हो, दो रास्ते हों, ये इख्तियार करो या इसलिए इख्तियार करो, तो या कर आप दो या कर रखता है जैसे रख सिराते मुस्तकीम इंसान रख जाता है। तो मेरे भाइयों अर्ज ये थी, अल्लाह ताला हमें सब को तौफीक अता फरमाए कि अपने आप को खासकारी और बरोदरी का शान इख्तियार करते हुए अल्लाह जल्ला जलालहु से ये ताल्लुक कायम होना चाहिए कि हर रोज बिला नागा अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, ये मांगे कि अल्लाह इस माहौल में भी अपने पल जो गर्म से दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाइए, इस माहौल में भी इसके बाद पुनर की तौफीक अता। यूं तो अल्लाह ताला ने सिखा दिया हर नमाज में मांगना, या मेरा हम या मेरा तय दिन का रखा, लेकिन होता क्या है कि हम मशीन की तरह पढ़ते हुए चले जाते हैं, कभी ध्यान नहीं देते कि हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह ताला, कुछ मांग भी रहे कि नहीं, तो उसी को ध्यान से मांग लो। और हमारे हजरत वाला हजरत की मुरम्मत करते जाता है, तो फरमाते हैं कि रात को सोने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो जाओ जमे के लिए, और जो कुछ थोड़े बहुत मामूलात है वो पूरे करने के बाद अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह मैं आपके दीन पर चलना चाहता हूँ, मैं आपके दीन के अहकाम पर अमल करना चाहता हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मगलूब हो जाता हूँ माहौल के आगे, रुकावटें मालूम होने लगती हैं, अल्लाह आपके कब्जे कुदरत में है, इन तारीखियों को दूर करना भी, इन आंधियों और तूफानों को दूर करना भी, और मुझे ये तौफीक देना भी कि मैं इस कुदरत के सही रास्ते पर चलूँ। اپنے فضل کرم سے مجھ کو نواز دیجیے، مجھ کو اپنے فضل کرم سے جس راستے پر چلا دیجیے، مجھے اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اس پر استقامت عطا فرمائیے اور اس راستے کی رکاوٹوں کو دور کریں۔ روز مانگو یہ اللہ تعالیٰ تو دیکھنا، ہمارے حضرت سانچی بریمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن عمل کر کے دیکھ لو اس پر، تو 40 دن عمل کر کے دیکھنا جو انشاءاللہ زندگی میں ایسی انتہائی خوشگوار انقلاب آ جائے گا۔ حضرت علی حضرت فرماتے ہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں، انشاءاللہ 40 دن عمل کرو گے تو ایک خوشگوار انقلاب آ جائے گا، اور کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کہہ تو سکو گے یا اللہ میں نے آپ کو پکارا تھا، میں نے آپ کی مدد مانگی تھی، تو انشاءاللہ اس پر نواز دیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا رب العالمين انك تفضل وكرمت رحمتنا وانا تمام گناہوں کو معاف فرمانا، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ آزادیاں ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے عمل و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے عمل و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما، یا اللہ ہم سے ہمت ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو متعلقین احباب کو ہر طرح سے گناہوں سے مرشرات سے اے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد پر دخل و کرم سے کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہم جو لوگ بیمار ہیں ان شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ ہم تندرست ہم کو تندرستی قسم کی تندرستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں آپ کی رحمت سے اس کی پریشانی کو رفع فرما۔ میرے بڑے بھائی محمد ولی راضی صاحب بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے، یا اللہ اپنے خود و کرم سے اپنی رحمت سے خوشی بات سے کامل عاجل مشبت عطا فرما، یا اللہ سب ان کو اپنی رحمت سے صحیح بات سے کامل عاجل مشبت عطا فرما، اور اللہ ہمارے متعلقین میں اور جو جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کو صحیح بات سے کامل عاجل مشبت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين برحمتك.